हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग एक अध्याय पाँच। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। अनुवाद। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूँगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्यानंद प्रभु के विषय में सत्य को जान सकता है। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित हैं। श्री नित्यानंद प्रभु समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी, अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग हैं, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो व्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये 2 भिन्न भिन्न स्थान नहीं हैं। वहाँ की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आँखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती हैं। किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल वालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौओं का चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं। भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का आनंद लेते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये चार मूल चतुर्व्यूह रूप हैं, जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य हैं। केवल इन्हीं तीन स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में, लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। परव्योम के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं। कृष्ण के निजी रूप में केवल दो भुजाएं होती हैं, किंतु उनके नारायण रूप में चार भुजाएं होती हैं। भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं और वे परम ऐश्वर्यमय हैं। श्री, भू तथा नीला नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि उनकी लीलाएं उनके एकमात्र विशेष कार्य हैं, किंतु वे अपनी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। वे पतित आत्माओं को चार प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं। जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते। उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज का वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्ज्वल किरणों से बना होता है। यह भाग सिद्ध लोक कहलाता है और भौतिक प्रकृति के परे होता है। यह आध्यात्मिक होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहती। यह सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ, घोड़े तथा सूर्य देव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं। जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम, क्रोध, भय या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगा कर उसी गति को प्राप्त किया है। जहाँ यह कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहाँ इसका आशय यह है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अंततः एक ही हैं। इसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से समझा जा सकता है, जिसमें ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान है। इस तरह पर व्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं होती है। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। उस निर्विशेष ब्रह्म तेज में केवल भगवान की तेजोमय किरणें होती हैं। जो लोग सायुज्य मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं, वे उस तेज में समा जाते हैं। तमो क्षेत्र भौतिक ब्रह्मांड के परे सिद्ध लोक का क्षेत्र स्थित है। वहाँ पर सिद्ध गण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। उस परव्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय विस्तार रहते हैं। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य हैं। वहां पर पर्व्योम में बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं। वे मूल कारण हैं, अर्थात समस्त कारणों के कारण हैं। आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित हैं। सारे छहो ऐश्वर्य आध्यात्मिक हैं। इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की ही अभिव्यक्तियां हैं। एक तत्थस्ता शक्ति है जो जीव कहलाती है। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय हैं। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय हैं, जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। वे सबके आश्रय हैं। वे हर प्रकार से अद्भुत हैं और उनका ऐश्वर्य अपार है। यहाँ तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। वे दिव्य शुद्ध सत्व संकर्षण नित्यानंद बलराम के अंश विस्तार हैं। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है। अब कृपा करके ध्यान पूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुने। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक्षाय विष्णु आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। वैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है और इस तेज से परे कारणार्व या कारण सागर है। वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है जो अनंत, अगाध और असीम है। वैकुंठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सभी आध्यात्मिक हैं। वहाँ भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। अतएव परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। उस सागर में भगवान संकर्षण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है। यह भौतिक जगत के अवयवों, उपादनों की पूर्ति करता है। क्योंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, अतएव यह वास्तव में भौतिक जगत की कारण नहीं हो सकती। लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति कौन कारण बन जाती है, जिस तरह लोहा अग्नि की शक्ति से लाल हो जाता है। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्राकृत्य के मूल कारण हैं। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाली उन स्तनों की भांति है जिनसे दूध नहीं निकलता। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकट्य का तत्कालिक कारण है, किंतु ये वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुषावतार कारणार्व दक्षाय विष्णु है। भगवान कृष्ण सृष्टा है और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र के साधन रूप कारण होते हैं। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार वे जीव रूपी वीर्य से गर्भाधान कराती है। उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती हैं, जिसके फल स्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप को उतने ही पृथक रूपों में प्रकट करते हैं जितने की ब्रह्मांड हैं। जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक उच्च श्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड पुनः उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से होकर निकल जाते हैं। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोगों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्च श्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्णांश के अंश हैं। मैं अपने हाथ के सात बित्ताओं के माप वाला शुद्र प्राणी हूँ। मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। बलराम के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला कहलाते हैं। मैं कहता हूँ कि यह कला महाविष्णु है। वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुष के स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं। गर्भोदक्षयी तथा शिरोदक्षयी दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कर्णोदक्षय विष्णु के पूर्ण अंश हैं। विष्णु के तीन रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं। दूसरा रूप गर्भोदक्षय है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। और तीसरा रूप क्षीरोदक्षय है जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वह माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। यद्यपि कर्णोदक्षय विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य, कूर्म तथा अन्य अवतारों के उद्गम हैं। भगवान के ये सारे अवतार या तो पुरुषावतारों के पूर्णांश हैं या पूर्णांशों के अंश हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। वे पुरुष कर्णदक्षय विष्णु सृजन, पालन और संहार के करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं। सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न हैं। वे मूल अवतार अन्य सबके बीज तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार हैं। काल, स्वभाव, प्रकृति, मन, भौतिक तत्व, मिथ्या अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर और अचर प्राणी अंततः उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। 16 आध्यात्मिक शक्तियाँ श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञान, जया, उत्कर्षिणी, विमला, योगमाया, प्रही, ईशाना तथा अनुग्रहा। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं और सारे ब्रह्मांडों पर आश्रित हैं, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी हैं। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से दो प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी उसके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार भगवद गीता भी बारंबार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, न वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य समझो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया है। वे महापुरुष कर्ण दक्षय विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश हैं। इस तरह मैंने नवे श्लोक की व्याख्या कर दी है। अब मैं दसवें श्लोक की व्याख्या करूंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदक्षय विष्णु हैं। इन गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोदक्षय के रूप में हर एक ब्रह्मांड में भिन्न रूप में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर उन्होंने केवल अंधकार देखा, जहाँ रहने योग्य कोई स्थान न था। तब वे इस प्रकार विचार करने लगे। तब उन्होंने अपने शरीर के पसीने से जल उत्पन्न किया और उस जल से आधा ब्रह्मांड भर दिया। ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया, तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बनाया और शेष आधे में 14 भुवन प्रकट किए। वहां उन्होंने अपने धाम के रूप में वैकुंठ को प्रकट किया और भगवान शेष की शैया पर वे जल में विश्राम करने लगे। वे वहां अनंत को अपनी शैया बनाकर लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र और हजारों हाथ पांव वाले दिव्य सर्प हैं। वे सभी अवतारों के बीज हैं और भौतिक जगत के कारण हैं। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता। वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह सृजन, पालन तथा संहार उनकी इच्छा से होता है। वे परमात्मा हिरण्यगर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण है। विराट रूप उनका अंश माना जाता है। वे भगवान नारायण भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्णांश के अंश मात्र हैं। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के स्रोत हैं। इस तरह मैंने 10वें श्लोक का अर्थ बतला दिया है। अब कृपया पूरे मनोयोग से 11वें श्लोक का अर्थ सुने। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश क्षीरोदक्षय विष्णु हैं। वे क्षीरोदक्षय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। सारे भौतिक लोक उस कमल नाल के भीतर स्थित हैं जो भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला। इन लोकों के मध्य 7 समुद्र हैं। वहाँ क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है जो पालनकर्ता विष्णु का धाम है। वे सारे जीवों के परमात्मा हैं। वे इस भौतिक जगत का पालन करते हैं और वे इसके स्वामी हैं। वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न युगों और मन्वंतरों में विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। उनका दर्शन न पाकर देवतागण क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तब वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती। ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश के भी अंश हैं, क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम हैं। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोकों को अपने शिरों पर धारण करते हैं। यद्यपि वे ये नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि अपने सिरों पर उन्हें उनके अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। अपने 1000 मुखों से वे भगवान कृष्ण का महिमा गान करते हैं, किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। वे निम्नलिखित सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। छाता, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत तथा सिंहासन। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतएव वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है अर्थात पूर्णांश के अंश हैं, वे नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम है, अतएव उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे जानते हैं कि अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्गम में कोई भेद नहीं होता। पहले भगवान कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे और कुछ उन्हें वामन देव का अवतार कहते थे। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान क्षीरोदक्षय का अवतार कहते थे। ये सारे नाम सत्य हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तब वे समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। इस तरह उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिल जाते हैं। जो जिस रूप में भगवान को जानता है वह उसी रूप में उनका वर्णन करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित की हैं। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के दास कहते हैं। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में, तो कभी मित्र के रूप में और कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएँ की, भगवान बलराम कृष्ण के सिर से अपना सिर बिड़ाकर वृक्ष की तरह लड़ते हैं, और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे वृक्षों की तरह गर्जन कर रहे थे और इस तरह के पशुओं की आवाज़ें निकालते थे। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। यह योग शक्ति कौन है और यह कहां से आई है? वह देवी है या आसुरी? यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शिरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं, जो कि उनके पूर्णांश के अंश हैं, अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें नचाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र नियंता हैं, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक हैं। उनके गुरुजन तथा भगवान नित्यानंद, अद्वैत आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं उनके अन्य भक्त, चाहे वे छोटे हों, संवयस्क हों या वरिष्ठ हों, सभी उनके पार्षद हैं जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। श्री अद्वैताचार्य तथा श्रील नित्यानंद प्रभु, जो भगवान के पूर्ण अंश हैं, उनके प्रधान पार्षद हैं। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं कराते हैं। अद्वैताचार्य साक्षात भगवान हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं। मैं अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण का अवतरण कराकर सारे विश्व का उद्धार किया है। भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। छोटे भाई के रूप में वे भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सके, अतः वे मौन रहे, भले ही मन वे दुखी थे। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनके मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। श्री राम तथा श्री लक्ष्मण, जो क्रमशः भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उनके अंश बतलाया गया है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने विविध पूर्ण अंशों से विविध रूपों में तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होता है, किंतु जो भगवान कृष्ण अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम है। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान नित्यानंद की महिमाओं का सागर अनंत और अगाध है। केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा क्योंकि इसे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूँ जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपया मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम श्री मीन केतन रामदास था, जो प्रेम के आगार थे। मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां पर आए। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते या उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते। जब कोई मीन केतन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते, क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती थी। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदंब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता जबकि दूसरा अंग कांपने लगता था। जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते थे। श्री गुणार्व मिश्र नामक एक सम्माननीय ब्राह्मण अर्च विग्रह की सेवा करता था। जब मीन केतन आंगन में बैठे थे तो इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, यहाँ मैं दूसरा रोम हर्षण सूत देख रहा हूँ, जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुए। तब मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। मैंने उनसे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वे दोनों एक रूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुट्टी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। अर्ध कुकुट्टी न्याय का अर्थ है, एक मूर्ख किसान ने एक बार सोचा कि वह अपनी मुर्गी का सिर काटकर धन बचा लेगा, क्योंकि उसे खाना देना पड़ता था, और उसकी पूंछ को बना रहने देगा क्योंकि यह अंडे देती थी। अतः अर्ध कुकुट्टी न्याय की कहावत निकली, जिसका पारिभाषिक अर्थ है आधी मुर्गी का तर्क। एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना और इस तरह दंभी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को न मानकर नास्तिक ही बन जाओ। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। निहाटी के निकटवर्ती क्षामठपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। उन्होंने मुझसे बारंबार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। उनके हाथ बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुनझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मद्मत्त हाथी को लजाने वाली थी। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और उनके और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी जिससे वे मद्मत्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे और कुछ उन्हें चावल डुला रहे थे। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं। मैं दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले, अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। फिर वे अपने संगियों समेत अंतर्धान हो गए। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मेरा स्वप्न टूट गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातः काल हो चुका था। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन पहुंच गया। भगवान नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई। कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो। जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों में शरण प्राप्त की। उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई है और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया है। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। मैं जगाई तथा मधाई से भी अधिक पापी हूँ और मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता था, क्योंकि वे प्रेमावेश में मत्त रहते हैं और कृपा के अवतार हैं, अतएव वे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करते। जो उनके समक्ष भूमि पर गिरते हैं वे उनका उद्धार कर देते हैं, अतएव उन्होंने मुझ जैसे पापी तथा पतित व्यक्ति का उद्धार कर दिया। यद्यपि मैं पापी हूँ और अत्यंत अधम हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरणों कमलों का आश्रय प्रदान किया है। मैं भगवान मदन गोपाल तथा भगवान गोविंद के दर्शन के विषय में ये सारे गोपनीय शब्द कहने के योग्य नहीं हूँ। वृंदावन के प्रमुख अर्च विग्रह भगवान मदन गोपाल रास नृत्य के भोक्ता हैं और व्रजराज के साक्षात पुत्र हैं। वे श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता तथा अन्यों के साथ रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे कामदेवों के भी कामदेव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। पीताम्बर धारण किए तथा फूलों की माला से अलंकृत गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे हैं। उनके दोनों ओर राधा तथा ललिता सेवा करती हैं। इस तरह वे अपनी माधुरी से सबके हृदयों को आकृष्ट करते हैं। प्रभु नित्यानंद की कृपा से मुझे श्री मदन मोहन का दर्शन कराया और श्री मदन मोहन को मेरे प्रभु तथा स्वामी के रूप में मुझे प्रदान किया। उन्होंने मुझ जैसे अधम को भगवान गोविंद का दर्शन कराया। न तो शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं, न ही इसे प्रकट करना उपयुक्त होगा। कल्पतरुओं के वन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिर में रत्नों से बनी वेदी पर व्रजराज के पुत्र भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधुरी को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। उनकी बाई ओर श्रीमती राधा रानी तथा उनकी निजी सखियां हैं। भगवान गोविंद उनके साथ रासलीला तथा अन्य अनेक लीलाओं का आनंद लेते हैं। अपने लोक में कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी सदैव उनका ध्यान करते हैं और अष्टदशाक्षर 18 अक्षरों वाले मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। 14 लोकों के सारे लोग उनका ध्यान करते हैं और वैकुंठ लोक के सारे निवासी उनके गुणों एवं लीलाओं का गायन करते हैं। उनकी माधुरी से लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती हैं, जिसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने इस प्रकार किया है। हे मित्र, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो यमुना तट पर केशी घाट में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्ष पात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं, जो नव पल्लव के समान प्रतीत होती है। उनका त्रिभंगिमा युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। निसंदेह वे साक्षात व्रजराज के पुत्र है। जो मूर्ख है वही उन्हें मूर्ति मानता है। उस अपराध के कारण वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, वस्तुतः वह घोर नरक में जा पड़ेगा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अतएव ऐसा कौन है जो उनके नित्यानंद के उन चरण कमलों की कृपा का वर्णन कर सके जिनसे मैंने इन भगवान गोविंद की शरण प्राप्त की है। वृंदावन में रहने वाले सारे वैष्णव जन कृष्ण के परम मंगलमय नाम के कीर्तन में मग्न रहते हैं। भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद उन वैष्णवों के प्राण धन हैं, जो श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। इस पतित आत्मा को भगवान नित्यानंद की कृपा से ही वैष्णवों के चरण कमलों की धूल और छाया प्राप्त हो सकी है। भगवान नित्यानंद ने कहा, वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ हैं। मैंने उनके संक्षिप्त कथन की यहाँ विस्तृत व्याख्या की है। मैंने वृंदावन आकर यह सब प्राप्त किया है और यह नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव हो सका है। मैंने बिना किसी संकोच के अपनी निजी कहानी लिख दी है। भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्मत्त बनाकर ये सब बातें लिखने के लिए बाध्य कर देते हैं। भगवान नित्यानंद के दिव्य गुणों की महिमाएं अगाध हैं। यहाँ तक कि भगवान शेष भी अपने हजारों मुखों से उनकी सीमा को नहीं पा सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी दया की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरि बोल।